الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم آدمی کا جب دن گزرتا ہے جیسے آج صبح سے اس وقت تک کا دن گزرا تو اس بات کی طرف ذہن بہت کم جاتا ہے کہ جو کچھ آج دن بھر ہم نے کیا وہ ہمارے اعمال نامہ میں ریکارڈ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے اور ہم سب اس کو مانتے ہیں, مگر ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا, اس کا خیال نہیں آتا, بلکہ اس وقت اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ آج دن میں صبح سے اس وقت تک ہم نے کیا کیا سینٹنس اپنی زبان سے بولا, کیا کیا بات ہم نے کہی, اس بات کہنے کا انداز نرم تھا یا سخت تھا, وہ بات ہم نے غصے سے کہی یا محبت کے ساتھ کہی, یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہیں. جبکہ جس دین پر ہمارا ایمان ہے, جس قرآن کو ہم مانتے ہیں, جن حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے, اگر ہم صرف اسی ایک پوائنٹ کو لیں, ہاؤ ٹو اسپیک وٹ ٹو اسپیک, اگر صرف اس پوائنٹ کو لیں تو کیا کیا ملے گا قرآن میں؟ نمبر ایک, آواز کتنی ہو. آپ سب جانتے ہیں سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کو حکم ہوا کہ جب تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہو تو ان کے سامنے آپ کی آواز وائس اتنی لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے جو حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے. ہمارے یہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ساؤنڈ کم کرنے بڑھانے کو ٹیوننگ کہتے ہیں. گویا اسلام کنٹرول کر رہا ہے ہماری وائس کی ٹیون کو. مگر ہم کو پورے دن یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ اس سلسلے میں بھی اسلام نے ہم کو کچھ آرڈر کیا ہے. وہاں چونکہ پیغمبر کا معاملہ ہے اور قرآن میں جو آتا ہے اس سے مسائل نکلتے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے, یہ قانون الہی ہے, اللہ کا قانون ہے. علماء اس سے مسائل نکالتے ہیں کہ اگر وہاں یہ چیز ہے آگے اس میں اور کیا کیا مسائل نکلیں گے. میں تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد دوسری جگہ قرآن میں آپ پوچھئے, وہاں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو, اچھا سلوک کرو. جب ماں یا باپ دونوں بوتھ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, اب اس کا خیال رکھو. فلا تقل لہما افن, تو لفظ اف نہیں کہہ سکتے. اف کا ترجمہ اردو والے کہتے ہیں ہوں. باپ نے کوئی بات کہی, ماں نے کوئی بات کہی, لڑکا جوان ہے لڑکی جوان ہے, پورا سینٹنس تو دور کی بات ہے, کہا ہوں نہیں کہنا. آپ کے یہاں بھی اس کی کوئی لفظ ہوگا جو آپ کو یہ حضرات سمجھا سکتے ہیں. گویا بولنے کا انداز, ہاؤ ٹو اسپیک وٹ ٹو اسپیک, دونوں کو ہم کو پابند بنایا اس لیے کہ ہم یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے, ہم وہ زندگی گزاریں گے جو ہمارے مالک جس نے ہم کو بتایا, وہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اور انہوں نے وہ چیز بتانے کے لیے سکھانے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرما کر ان کے ذریعے ہم کو سکھایا اور سمجھایا. اس کے بعد آدمی غصے سے بولے گا یا نرمی سے بولے گا, اس کا انداز چیخنا چلانا ہوگا یا اس کا انداز پیار کا ہوگا. شمائل ترمیزی میں امام ترمیزی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی, فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابا ولا فحاشا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کوئی سخت جملہ نہیں نکلا اور کوئی فحش بات نہیں نکلی. آپ نہ فاحش تھے اور نہ ہی آپ سخاب تھے. کبھی آدمی سویٹ سینٹنس بولتا ہے تو دوسرے کا دل جیتتا ہے, اور کبھی آدمی بہت تیز بولتا ہے حالانکہ حق پر ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے لیکن ملنے والا فار ایور اسے کٹ جاتا ہے. اسلام نے اس بات کو بھی پابند کر دیا, حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم, کہ جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر اسمائل تھی. تو وین ایور وی آر میٹنگ سم باڈی ہاؤ مسٹ بی اور فیس کہیں گے. اسلام اس کو کنٹرول کر رہا ہے. کیوں؟ اسلام کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, صرف اور صرف اسلام ہے, صرف اور صرف اسلام ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیسے رہنا ہے, کیسے سہنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, کیسے بزنس کرنا ہے, کیسے نوکری کرنی ہے, کیسے ماتحت کے ساتھ چلنا ہے. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, بہت خوش قسمت صحابی. عجیب بات ہے, مدینہ منورہ میں لوگ जब उनकी खेती में, उनके बाग में सब्जी तैयार होती थी, जिसको खीरा कहते हैं, ककड़ी कहते हैं, वो चीज तैयार होती थी, खजूर तैयार होती थी, तो वो उसमें से गिफ्ट ले जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सब ले जाते थे। लेकिन यह मां बाप ऐसे थे, इन्होंने अगर गिफ्ट दिया वो क्या दिया, अपना बेटा हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अनस 10 साल के थे, 10 साल की उम्र, आप सोचिए 10 साल कितना बड़ा हो गया, 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, वो दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत अनस कहते कि मैं खादिम रहा, आपकी खिदमत में रहे, फरमाया और रहे अखीर तक। आप सोचिए अखीर तक कितना हो गया, एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, अखीर जिंदगी तक रहे। फरमाते हैं कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। ये क्या सिखा रहे हैं? तो जिंदगी की हर चीज इस्लाम सिखा रहा है। तो ये मैं बता रहा था ट्यून को, ये मैं बता रहा था अंदाज को, उसके बाद जो सेंटेंस जुबान से निकलेगा उसको चेक करना होगा, इफ इट इज ट्रूथ और इट इज फॉल्स लाई। जब इसको चेक करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम तिर्मिजी अलैहि रहमा ने रिवायत किया कि अगर आदमी एक बार झूठ बोलता है, वंस, वन हु टेल्स ए लाई वंस, फरमाया जुबान में इतनी बदबू पैदा होगी कि उसकी तकलीफ की वजह से रहमत का फरिश्ता एक मील दूर चला जाएगा। इसका मतलब है जो कुछ जुबान से हम बोल रहे हैं उसको हमें चेक करना है, ये सही है या गलत है, हम एनी हाउ नहीं बोल सकते, पहले सोचना पड़ेगा। और वो हदीस जो आपने बहुत सुनी होगी, बहुत शॉर्ट हदीस है वो, कम टाइम होता है तो उलमा उसको सुनाते हैं, इज़नी व आवज़िज वाली, उसमें दूसरी नसीहत क्या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो है वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन, वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन, नेवर, कभी भी ऐसा कलाम जुबान से न बोलो जिस जुमले से, जिस कलाम से, जिस बात से कल को माफी मांगनी पड़े, चाहे किसी इंसान से चाहे अल्लाह से। इंसान से उसकी गीबत की कल माफी मांगनी पड़ेगी, इंसान को कुछ बुरा भला कहा, हुकूकुल इबाद है, माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर अल्लाह की नाफरमानी की झूठ बोला तो अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी। हर वो कलाम जुबान से नहीं बोल सकते जो मर्जी आए, इसलिए कि चेक करना पड़ेगा क्या यह सही है या गलत है। इसी तरह बाकी चीजें आप समझ सकते हैं, इसी तरह गीबत की इजाजत नहीं होगी, इसी तरह से चुगली की इजाजत नहीं होगी, किसी पर बोहतान बांधने की इजाजत नहीं होगी, हर हर चीज को चेक करना पड़ेगा, हम एनी हाउ बोल नहीं सकते। जब सिर्फ एक बोलने में इतना है तो देखने में कितना होगा, हाथ को चलाने में कितना होगा, पैर को चलाने में कितना होगा, ये जाहिरी आजा हैं, उसके बाद दिमाग, इसके अहकाम कितने होंगे। और इस्लाम के मुकम्मल होने की बिना पर दुनिया वाले जो चाहेंगे खाएंगे, हमारे यहां जैसे जुबान से बोलने में पाबंदी है, एक चीज बोल सकते हैं एक चीज नहीं, इसी तरह से खाने में भी पाबंदी है, हर चीज को हम नहीं खा सकते। डरबन वाले तो माशाल्लाह मछली खूब जानते हैं, एक मछली जो अंदर खुद मर गई और मरने के बाद वो कहां जाएगी, ऊपर आती है पेट आसमान की तरफ, उसको कोई खा सकता है? हम कहेंगे नहीं खा सकती। दूसरी हमने जिंदा पकड़ी और वो हमारे पास मर गई, हमारे पकड़ने की वजह से हमने उसको पानी से दूर रखा, इसको हमने मारा, हम इसको खा सकते हैं? खा सकते हैं। जो खुद मर गई बज़ाहिर उसको अल्लाह ने मारा, बज़ाहिर वो जो अंदर मरी पानी के वो बज़ाहिर उसको अल्लाह ने मारा, लेकिन हम नहीं खा रहे हैं। और दूसरी जिसको हमने पकड़ा और वो हमारे पास मर गई या हमने उसको काट दिया चाकू से, उसको हम खा रहे हैं। वाई उसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, नहीं खाएंगे। इसकी इजाजत अल्लाह ने दी, इसको हम खा रहे हैं। एनी हाउ हम हर चीज नहीं खा सकते। यही वजह है हमको सोचना पड़ता है हलाल है या नहीं। हलाल है तो खाएंगे, हराम है तो नहीं खाएंगे। हर चीज के साथ यही आकाम है। तो मेरा पॉइंट यह था, सुबह से अब तक जो कुछ हमने किया, जब इतने अहकाम हमसे मुताल्लिक हैं, तो सुबह से अब तक जो कुछ हमने बोला, जिस अंदाज से बोला, आहिस्ता बोला, जोर से बोला, नरम बोला, सख्त बोला, जो कुछ हमने देखा, गुनाह की चीज को देखा, जायज चीज को देखा, सवाब चीज को देखा, ये सब कुछ हमारे नामे आमाल ने, फरिश्ते ने लिख दिया। हम भूल गए, हमें अब याद भी नहीं है, हमें अब याद भी नहीं है, लेकिन फरिश्ता नहीं भूला। और उसके बाद सिस्टम बहुत मुश्किल है। वो जो हदीस आपने सुनी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत में अल्लाह के सामने महशर के मैदान में खड़े होंगे, तब तक कदम हटा नहीं सकता जब तक पांच सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। नंबर एक, अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र को कहां खत्म किया, वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। मे बी इट इज 5 मिनट्स पीरियड, अल्लाह पूछेगा। अन उम्रिही, इसमें हम पाबंद हैं, हम किसी जगह बैठ जाएं, जो चाहे डिस्कस करें, जिस काम में वक्त खर्च करें, यह नहीं होगा। हदीस ने कहा चेक किया जाएगा ये उम्र आपने कहां खर्च की। और माल के बारे में, मिन आईना इक्तसाबा, माल तुम्हारे पास आया माल, लेकिन पहले कहां से लाए। हर चीज को हम हाथ में नहीं ले सकते, हम हर चीज को टच नहीं कर सकते। जैसे हम अजनबी औरत को टच नहीं कर सकते, ऐसे ही ईमान वाला हराम नोट को टच नहीं कर सकता। जैसे ईमान वाले की निगाह हराम जगह नहीं पड़ सकती, ऐसे ही ईमान वाला हराम जुमला नहीं बोल सकता। अब इन आमाल के दो हिस्से हो जाते हैं। अव्वल वो आमाल जिनको देखने करने की इजाजत है, और दूसरे वो आमाल जिनको करने की इजाजत नहीं है। जिनको करने की इजाजत है उनमें अल्लाह ने इतनी चीजें दे दी, इतनी चीजें कि आदमी छोटी छोटी चीज करता है, अल्लाह सवाब का अंबार देता है। बहुत इजी हदीस है और हर जगह मैं उसको सुनाता हूं कि आज के जमाने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जवान लड़का लड़की अपने बूढ़े बाप को मोहब्बत से निगाह डालता है, अभी उसने सर्विस नहीं की, बिस्तरा नहीं बिछाया, पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, अभी उसका हाथ पैर नहीं दबाया, बल्कि सिर्फ मोहब्बत से उसके चेहरे का दीदार किया, ये मेरा प्यारा अब्बा है, ये मेरी प्यारी मां है, मोहब्बत से एक नजर डाली, अल्लाह पाक इतना खुश होते हैं के फरिश्ते से कहते हैं इस एक नजर के बदले इस बेटे को बेटी को जो इसने मां या बाप के चेहरे पर डाली एक मकबूल हज का सवाब दे दो। एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल ये बहुत छोटा है, तो इसलिए उस सहाबी ने क्वेश्चन किया, अमल छोटा है और सवाब ज्यादा है, उस सहाबी ने क्वेश्चन किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 100 times 100 बार नजर डाले तो मतलब यह है कि काम तो छोटा है, यह सवाब ज्यादा है, तो इतना ज्यादा सवाब उसको मिल जाएगा। 100 times उसने नजर डाली तो 100 हज का सवाब। 100 हज नॉट ए जोक। 100 हज कितना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब जवाब दिया। क्या फरमाया? क्या तुम अल्लाह को बखील समझते हो? अल्लाहु अकबर। आंख से मुतालिक, जुबान से मुतालिक, वो जो हदीस आती है मशहूर, सबको याद है, आदमी एक बार सुबहान अल्लाह कहता है। क्या कहा? सुबहान अल्लाह। बहुत आहिस्ता से कहा, यह गुनाह की बात नहीं है। स्पीक लाउडली। हाँ, जजाकुमुल्लाह। हदीस में आया कि जन्नत में एक दरख्त लग गया। हमको यकीन आना चाहिए, हमारे दिल में पक्का मजबूत यकीन होना चाहिए, हम सब ने अभी सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में दरख्त लग गया। और जब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे दूसरा दरख्त लग जाएगा। यह ऐसा पक्का यकीन होना चाहिए जैसे हमने पैसा दे दिया बच्चे को, वह समझता है बस मुझे स्वीट मिल गई, वो इसको फॉर ग्रांटेड लेता है। और उसके बाद जब बुखारी शरीफ में जाते हैं, बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक आदमी ने एक टाइम वंस सूरह इखलास तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और आप जानते हैं बुखारी के बारे में कितनी मजबूत किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वन हु रिसाइट्स वन सूरह इखलास, 1/3 ऑफ कुरान उसको सवाब दे दिया जाएगा। एक दफा छत्ता मस्जिद में हम लोग एतिकाफ में थे, देवबंद में। छत्ता मस्जिद आती है तो मिठास आती है। हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा रहते थे वहां, उस साल वहां एतिकाफ में बहुत लोग थे। शेख उल हदीस मौलाना यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, अब तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, यहां के भी थे, मुफ्ती शब्बीर साहब सलूजी थे, मुफ्ती रजाउल हक साहब थे देवबंद के, कारी सिद्दीक साहब बीच में आते थे, हजरत शाह अबरारुल हक साहब अलैहि रहमा आते थे। तो हजरत ने बयान किया मोतकिफीन में, हजरत ने फरमाया, तुम लोग वजू खाने से मस्जिद आते हो वजू करके, इसमें कोई शक नहीं, हर कदम पर एक नेकी का सवाब, हर कदम पर एक गुना माफ, हर कदम पर एक दर्जा बुलंद, और मस्जिद तक पहुंचे कितनी नेकियां मिली, कितने गुना माफ हुए और कितने दर्जे बुलंद हो गए। फिर हजरत ने क्या फरमाया? अरे दुनिया के लोग साइड बिजनेस करते हैं, कमाई में किफायत नहीं करते, यह सवाब पैर से चलने का है। अगर इसी टाइम में तुम जुबान को इस्तेमाल करो और सूरह इखलास तिलावत करो, बताओ कितने कुरान कमाओगे। आदमी दिन भर बहुत कमा सकता है अगर हम इस तरह से अपनी जिंदगी का चार्ट बनाएंगे सुबह से शाम तक का। अल्लाह जानता है हम एक दिन में कितना कमाएंगे। एक बूढ़े आदमी थे, उनसे पूछा गया, यह भी हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा ने सुनाया, उनसे पूछा गया, हजरत हाउ मच जिक्र यू आर मेकिंग ड्यूरिंग 24 आवर्स? उन्होंने कहा, जब जवान होता है आदमी तब करता है, जब जवान था तब मैं जिक्र करता था, आज बूढ़ा हूं कम होता है। कहा, हजरत फिर भी बूढ़े हैं कितना करते हैं? कहा, बहुत कम, जब जवान था तब बहुत करता था। कहा, हजरत व्हाट इज दैट कम, कितना है? तो हजरत ने फरमाया, बड़ी मुश्किल से विद इन 24 आवर्स मैं जिक्र करता हूं 1,25,000। और ये बूढ़े कौन थे? ये थे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। आप सोचिए, जो शख्स 24 घंटे में 1,25,000 जिक्र करता है बुढ़ापे में, उसकी जवानी का जिक्र कितना होगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कि बुढ़ापे में हजरत से किसी ने अर्ज किया, हजरत आप बुढ़ापे में इतने जोर से जिक्र करते हैं। उस जमाने में निजामुद्दीन जंगल था और जंगल में आदमी बोलता है तो आवाज दूर जाती है, जब उस जमाने में जंगल ही जंगल था, हजरत फरमाते थे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आवाज जाती होगी जंगल में, इतना जोर से जिक्र करते थे। तो फरमाया हजरत ने, हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमत तो बहुत हजरत की बात मजबूत होती थी, फरमाया बुढ़ापे में किसी ने हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया अब तो बुढ़ापा है, जोर से इतना जिक्र करते हैं, अब आराम से कीजिए। तो हजरत मौलाना इलियास साहब ने फरमाया जिस जिक्र के जरिए से अल्लाह ने यहां पहुंचाया, अब बुढ़ापे में उसको छोड़ने को जी नहीं चाहता। हालांकि उस स्टेज में जाने कहां कितने मामूलात रहे होंगे, कैसे मुराकबा होता होगा, कैसे क्या करते होंगे, और इतने सारे चीजें हैं जिनसे आदमी आगे बढ़ता है। और ये चीज तो आज दुनिया हर जगह देखती है, आप भी यहां देखते होंगे एतिकाफ में कितने लोग हैं जो रमजान में एक दिन में पूरा कुरान खत्म करते हैं। लेकिन नई जनरेशन वो पूछती है, मौलाना इज इट पॉसिबल, नई जनरेशन पूछती है मौलाना हाउ कैन रीड एनी बॉडी 400 रकअत्स ड्यूरिंग 24 आवर्स। लेकिन जो लोग इस माहौल में रहते हैं वो देखते हैं अपनी आंखों से। इतना ही नहीं बल्कि एक दफा हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा ने फरमाया कि हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखे बहुत से लोगों को कि इस साल जितना आप कुरान पाक, नहीं हजरत शेख अलैहि रहमा ने खतूत लिखे कि जितना इस साल आप कुरान रमजान में पढ़ोगे मुझे इत्तला करना। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने रमजान के 30 दिन में 30 कुरान पाक खत्म करके लिख दिए, लेकिन उनमें चंद ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा कि हमने 61 कुरान पाक 1 महीने में खत्म किए। कैसे? दिन में 1 कुरान खत्म किया, रात को 1 कुरान खत्म किया, और तरावी में एक एक पारा चलता था तो रमजान में 1 पारा वो हुआ, 1 कुरान वो खत्म हुआ, तो 61 कुरान रमजान में खत्म। आज के जवान से जिसको टच नहीं है आमाल से, उसके सामने जब कहेंगे वो क्वेश्चन करता है मौलाना ये मुमकिन है, वो टाइम को कैलकुलेट करते हैं। फजाइल आमाल में किसी किसी जगह है कि इतनी रकातें फलां बुजुर्ग पढ़ते हैं, इतने पढ़ते थे कुरान पढ़ते थे। एक ने मुझसे क्वेश्चन किया, मुझे जवाब नहीं था, मैंने हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमा से पूछा, मैंने कहा हजरत एक आदमी ने क्वेश्चन किया क्या कोई आदमी इतना कुरान पाक इतनी देर में पढ़ सकता है? हजरत ने फरमाया अगर सारा हिसाब दुनिया के एतबार से लगाओगे तो मेराज का क्या जवाब दोगे? तो जो लोग इन आमाल की तरफ देखते हैं वो अपने लिए बहुत कुछ जमा करते हैं, फराइज की पाबंदी, नवाफिल की पाबंदी, मामूलात, तस्बीहात, तिलावत। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, स्वीट वॉइस, अल्लाहु अकबर। कभी मौलाना इल्मे कलाम का मसला आम लोगों के बयान में बयान करते थे, इतना आसान बनाकर, इतना आसान जिसको उर्दू में कहेंगे हलवा। आदमी नहीं समझता था यह इल्मे कलाम का और अकायद का मसला है जिसको मौलाना बयान करते, इस तरह से बयान करते थे। असल मुझे दूसरी बात कहनी थी, वो मेरे जहन से निकल गई, मैं जो बात आपको सुना रहा था लंबी हो जाएगी। तो हजरत, हाँ, मौलाना उमर साहब फरमाते थे कि बाज मर्तबा लोगों को उज्र होता है कि उनके मामूलात पूरे नहीं होते ओवर बिजी होने की वजह से, दीन के काम में मशगूल होने की वजह से, घर के कामों में ओवरलोड होने की वजह से। फरमाते थे मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा, हल बताऊंगा मामूलात को काबू में करने का। फरमाते थे कि तय कर लो कि हर अजान के वक्त हम मस्जिद में मौजूद होंगे, तो पांचों नमाजों में अजान और जमात के दरमियान इन बिटवीन जितना टाइम है, तुम देखो बहुत से मामूलात काबू में आ जाएंगे, फिर तुमको बहुत थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वाकई अगर एक आदमी फजर की अजान से लेकर जमात तक मस्जिद में रहे, जोहर में अजान से जमात तक, असर में, मगरिब में तो टाइम थोड़ा होता है, ईशा में, इस खाली टाइम में ये मैं भी 10 मिनट 15 मिनट ही हूं, पूरे दिन में कितना टाइम मिल गया, फिर ये आदमी मसला नहीं पूछेगा, मौलाना अगर मैं चलते चलते तस्बीह करूं तो हो जाएगा, फिर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अलग लोग हैं जिनको जब आदत होती है जिक्र की, तिलावत की, वो काम करते करते भी करते हैं। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब अले रहमा की आप बीती में है कि उनके वालिद हजरत मौलाना याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बुक शॉप में बंडल भी बांधते थे, किताबें भी बांधते थे, उस हाल में तिलावत करते थे और कितने पारे और ये कितने कुरान पाक खत्म करते थे। और वहां तो औरतों का आलम यह था, फीमेल का, हजरत शेख ने लिखा है कि रमजानुल मुबारक में हमारी औरतें, बच्चे भी हैं, रात को जागती भी हैं और दिन में सोने को नहीं मिलता, उसके बावजूद रमजान के आलम में हमारे घर की औरतें एक दिन में 16-16 और 18-18 पारे तिलावत करती। फीमेल 18 पारे तिलावत करती है पूरे दिन में और घर का काम करती है। आप जानते हैं वहां की औरतें घर का खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब कुछ काम करती है। लेकिन औरतें इतना पढ़ लें, मेरा और आपका मामूल कितना होगा। अल्लाह हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। और दूसरा जो जुज है वो है वो चीजें जिनकी इजाजत नहीं है उनको करना, उनको सब जानते हैं कि गुनाह के काम कहते हैं। मेरे भाइयों, उसमें एक सुस्ती ये होती है कि आदमी गुनाह को गुनाह नहीं समझता। मिसाल के तौर पर आज दिन में हमने नजर से कितने गुनाह किए कि हमें ख्याल भी नहीं आया ये गुनाह है। जब ख्याल नहीं आया तो तौबा कैसे करेंगे, ख्याल आएगा तो तौबा करेंगे। कितनी चीजें जुबान से ऐसी बोली जिसका ख्याल नहीं आया। और इन गुनाहों में आपस में फर्क है। एक गुनाह है जिसको अभी हमने बयान किया, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह किज्ब है, उसकी वजह से मुंह में बदबू पैदा हो गई। लेकिन दूसरा गुनाह गुनाह है, मसलन चोरी, उसकी सजा क्या है इस्लाम में, सिर्फ बदबू पैदा हो जाएगी या हाथ काटा जाएगा। गुनाह इन नेम ये एक सेम हैं, लेकिन हुक्म में बहुत सख्त। तीसरा गुनाह है वो भी जुबान से बोला मगर वो है किसी को तोहमत लगा दी, उसकी सजा ताजीर में उसकी सजा कोड़े है। और ये उलमा जानते हैं मिनिमम कोड़े कितने हैं, किसी को तोहमत लगाने के कोड़े कितने हैं। और दूसरा गुनाह है कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह बचाए, जिना में मुबतला हो गया और था शेख शादीशुदा, वो भी गुनाह है लेकिन उसकी सजा है संसार करना, रजम करना। और इन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो वर्ड गुनाह सेम है लेकिन हर गुनाह की हैसियत अलग अलग है। इसीलिए आप इस्लामी कानून की किताबों में, फिकह की किताबों में पढ़ेंगे, वहां एक चैप्टर होता है बाब कलिमातिल कुफ्र, कौन सा जुमला अगर जुबान से बोला तो आदमी का ईमान खत्म हो जाएगा। और जो कुछ आदमी करता है बोलता है, कुरान ने कहा फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो नेकी करेगा कयामत में उसको देख लेगा। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर कोई छोटा सा भी जर्रा कोई भी किया गलती का, वो भी उसको कयामत में देखेगा। हमने मिसकाल जर्रतिन में उस जर्रा को नहीं पाया देखा, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये चीज देखी जिसको हमारी जुबान में सिरसों कहते हैं, आपकी जुबान में क्या कहते हैं? है? ससम। जर्रा उससे भी छोटा होता है। कुरान पाक ने यह बात कही है, इसलिए हम लोगों को कभी कभी तवज्जो करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में नेकियां आ जाएं और गुनाहों से हम महफूज रहें। उसके लिए जो जराया है उनको इख्तियार करना चाहिए। जब आदमी फिक्र करता है तो मुनजाने बिल्ला तौफीक मिलती है। अल्लाह ने हम लोगों को जन्नत में पहुंचाने का इरादा कर लिया है, अगर ऐसा न किया होता तो हम इस वक्त मस्जिद में न होते। अगर अल्लाह ने इरादा न किया होता तो हमारे दिलों में ईमान न होता। अगर अल्लाह ने हमारे जन्नत में ले जाने का इरादा न किया होता तो फिर हम मस्जिद की तरफ मुतवज्जे न होते। हम अल्लाह के फजल से ईमान की हालत में बैठे हैं, हम अल्लाह के फजल से अल्लाह के घर के अंदर बैठे हैं, हम अल्लाह के फजल से सब बावजू बैठे हैं, हम अल्लाह के फजल से फर्ज नमाज अदा किए हुए हैं, हम अल्लाह के फजल से क़िबला की तरफ बैठे हैं। इतनी नेकियां अल्लाह ने हमको अपने फजल से अता की, गोया अल्लाह ने हमारी मगफिरत का इरादा कर लिया है। लेकिन शैतान हमारे पीछे है, शैतान हमारा दुश्मन है, उसकी वजह से हमें बार बार चेक करना चाहिए। सब लोग आज बॉडी का चेकअप करते हैं बार 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 बार, और डॉक्टर भी कहते हैं फिराओ फिराओ। इसी तरह हमें ईमान को, ईमानी आमाल को जांचने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना चार मिनट अलावा हो गई बस, वरना मैंने पाबंदी की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ कीजिए, आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، يا الله ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. يا الله ہم آپ کے راہ پر آنا چاہتے ہیں، آپ کے صالح نیک بندے بننا چاہتے ہیں. اللہ بہت بار ارادہ کیا مگر یہ شیطان ہم کو تنگ کرتا ہے، اللہ یہ نفس ہم کو مجبور کرتا ہے، ہماری بری عادتیں ہم پر غالب آتی ہیں. اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم آپ کے نیک صالح بندے بن جائیں. اے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کو اختیار کرنا آسان فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آپ نے ہم کو یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھیں پاک دیے تھے، ہم نے گناہوں سے ان کو ناپاک کیا ہے. اللہ اللہ ایسی رحمت ہم پر نازل کر دیجئے جو ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں آپ کی رحمت سے پاک ہو جائے. اللہ ایسی رحمت ہماری طرف متوجہ فرمائیے. یا اللہ ہمیں پاک وجود عطا کر دیجئے، پاک دل، پاک دماغ، پاک زبان، پاک آنکھیں عطا فرما دیجئے. یہ ہمارے ہاتھ جو ہم نے آپ کے سامنے اٹھائے، اللہ ان کو پاک فرما دیجئے. اللہ ہمیں پاک رزق عطا فرمائیے، پاک حلال روزی عطا کیجئے. یا اللہ برکت والا رزق عطا کیجئے، یا اللہ وسعت والا رزق عطا کیجئے. یا اللہ ہمارے قرضوں کو غیب سے ادا فرمائیے، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو لڑکیاں نکاحوں کے لیے منتظر ہیں، جو جوان نکاحوں کی تلاش میں ہیں، سب کو اپنے غیب کے خزانے سے انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ سنت کے مطابق نکاح نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کے نکاح ہو گئے ان کو اولاد صالح عطا کر دیجئے، جن کو اولاد دی ہے یا اللہ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائیے، اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنا دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہماری قسمت میں بڑھاپا لکھا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے آسان بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، بڑھاپے کی زندگی کو آرام والی زندگی بنا دے، بڑھاپے والی زندگی کو آسانی والی زندگی بنا دے، خیر اور بہتر زندگی بنا دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ میں جو قبروں کو پہنچ چکے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں نور داخل فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، عالم انسانیت کو ہدایت عطا فرما، ہماری مستورات کو پردہ نصیب فرما، ان کو حیا عطا فرما، ان کو دیندار زندگی نصیب فرما، بچوں کی نیک تربیت نصیب فرما، اے اللہ ان کو شکر گزاری عطا فرما، ان کو جنت میں ہمارا رفیق بنا۔ اللہ جس طرح آپ نے ہم کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اسی طرح قیامت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام نصیب فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔